جو آج جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہی کر رہا ہوں کہ اسے وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ایز اے پرابلم، وی آر رادر سیلیبریٹنگ اٹ، اور اس کے پیچھے پورا فریم ورک ہے ملٹی کلچرل ورک. لیکن جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہوئی ہے زندگی کی، اس کو جوڑ دیا ہے دو قسم کے آئیڈیا سے. ایک ڈائیورسٹی آف لائف should not be condemned, it should be celebrated. دوسرا انہوں نے یہ کیا، ایسے سوشل تھیورسٹ یا سوشیولوجسٹ ڈیولپ ہوئے جنہوں نے یہ بتایا کہ ایک ایسی سوسائٹی جس میں کانفلکٹ نہ ہو اور کانفلکٹ لیس سوسائٹی ہو، وہ ایک بے رنگ معاشرہ ہے. ایک ایسا معاشرہ جو کہ جمود کا شکار ہے، ایک ایسا معاشرہ جو کہ ٹھہراؤ ہے اس کے اندر، اور ٹھہراؤ تو خیر پازیٹیو ورڈ ہے، جمود کا شکار ہے، کلر نہیں ہے اس میں، ود آؤٹ کلر، بلیک اینڈ وائٹ معاشرہ ہے،
اسٹیگنیٹ
ہے. تیسری چیز یہ کہ ایک ایسا سیاسی نظام، ایک ایسا سماجی نظام اور ایک ایسا معاشرتی نظام آپ کو چاہیے جو کہ اس ڈائیورسٹی کو سسٹین کرے، ایلیمینیٹ نہ کرے. یعنی کہ اگر آپ کوئی ایسی تحریک چلاتے ہیں جس کے نتیجے میں اس پاسبلٹی یا اس ڈائیورسٹی کو آپ کسی ریاستی یا معاشرتی یا معاشی عمل کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کریں تو اسے ریزسٹ کیا جائے. پھر ایک زبردست قسم کا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے پچھلے 50 سالوں کے اندر، جس میں سب سے زیادہ کانٹریبیوشن جو ہے پوسٹ ماڈرنسٹوں کی ہی ہے. وہ کہ انہوں نے ماڈرنزم وغیرہ کو کریٹیسائز کیا، لیکن جس چیز کو انہوں نے بچا کے دے گئے وہ ڈائیورسٹی تھی، ڈائیورسٹی اور ایگزسٹنس آف کانفلکٹ اینڈ سسٹیننس آف کانفلکٹ ود ان سوسائٹی، اور ان کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا کہ وہ کانفلکٹ جو ہے وہ وائلنٹ نہ ہو بلکہ وہ سیلیبریٹنگ. اس کے لیے پوسٹ ماڈرنزم کی دلیل ہے، پوسٹ اسٹرکچرلزم کی دلیل ہے، ریکنسٹرکشنزم کی دلیل ہے، بہت ساری دلائل ہیں، وہ ہم دیکھیں گے بعد میں. لیکن پہلے تو یہ چیز کہ کمپارٹمنٹلائزیشن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیوں ہوتی ہے. لیکن جو کانفلکٹ تھیورسٹ ہیں انہوں نے، جو ان سے پہلے جو بڑے سوسیولوجسٹ تھے جیسے مارکس، مارکس چاہتا ہے ایک کلاس لیس سوسائٹی بنانا، کلاس لیس سوسائٹی، ایک ایسی سوسائٹی جس میں کلاسز نہ ہوں، کلاس اینٹیگنزم ختم ہو جائے. تو مارکس کانفلکٹ کو انٹرپریٹ کرتا ہے ایک برائی کے طور پہ، کہ بھائی کانفلکٹ کیوں ہو رہا ہے، کانفلکٹ ہو رہا ہے ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے نتیجے میں، اور وہ ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جب ختم ہو جائے گا تو مختلف کلاسز ختم ہو جائیں گے اور ایک ہی کلاس رہے گی پرولیٹیریٹ کلاس، اور پھر کلاس لیسنس جو ہے وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف سے ہی آئے گی، اور جب کانفلکٹ ختم ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ ایک بہتر اچھا معاشرہ ہوگا، اور وہ معاشرہ جو ہوگا وہ آئیڈیل معاشرہ ہوگا. یعنی کہ آئیڈیل معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں کانفلکٹ نہیں ہوتے، یا جتنے مارکسسٹ ہیں آگے کے بعد میں جو سوسیولوجسٹ ہیں جو مارکس کو گورو کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ کلاس لیسنس کی طرف جانے کا مطلب ہے کانفلکٹ ریزولوشن. مارکس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کیپٹلسٹ اسٹیٹ اور کیپٹلسٹ سوسائٹی نیسسریلی اینٹیگنسٹک اور کانفلکٹ ریڈن سوسائٹی اور کانفلکٹ ریڈن اسٹیٹ ہوتی ہے. یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی ریاست جس میں کانفلکٹ موجود ہونا اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے نیسسری کنڈیشن ہے. لیکن دیکھیے ہم نے یہ دیکھا کہ ہسٹوریکلی مارکس تو ختم ہو گیا، مارکس ختم ہو گیا، مارکسزم بھی ختم ہو گیا، اور سرمایہ داری موجود ہے، اور سرمایہ داری کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہوئی اس طریقے سے اشتراکی، جس طریقے سے وہ کوشش کر. تو کلاس لیسنس جو ہے اس کا خواب تو پورا نہیں ہوا. تو اب کیسے ریکنسائل کریں कॉन्फ्लिक्ट को, जो कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को री इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहा कॉन्फ्लिक्ट का होना तो जिंदगी की अलामत है, कॉन्फ्लिक्ट की मौजूदगी ही तो महमेज देती है इस जिंदगी को, कॉन्फ्लिक्ट की मौजूदगी तो जिंदगी में मानवीयत पैदा करती है, कॉन्फ्लिक्ट की मौजूदगी ही तारीख के धारे को आगे बढ़ाती, कॉन्फ्लिक्ट की मौजूदगी जो है वो नॉवल्टी की तरफ ले जाती है, कॉन्फ्लिक्ट की मौजूदगी स्पॉन्टेनिटी की तरफ ले जाती है। तो ये कहना कि आइडियल माशरा वो होता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री माशरा होता है, ये तो ठीक बात नहीं है, बल्कि असल माशरा तो होता है कॉन्फ्लिक्ट लिडन माशरा, और कॉन्फ्लिक्ट लिडन माशरा जो होता है उस कॉन्फ्लिक्ट की डायमेंशन, जैसे मार्क्स कहता था कि यकरंगी होगी, यानी कॉन्फ्लिक्ट की बुनियादी नौइयत जो होती है वो नेसेसरीली ये होती है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा है और कुछ लोगों के पास नहीं है, और इन दोनों के दरमियान एक एंटेगनिज्म मौजूद है, और वो एंटेगनिज्म नेसेसरीली जो है वो रिड्यूस होता है सोशल इंकलाब पर। तो ये कहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि ठीक है कि उस कॉन्फ्लिक्ट की नौइयत एक एक डायमेंशन उसकी जो है वो एंड इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी है, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट की एक बुनियाद जो है मीनिंग ऑफ आर्ट भी है कि आप कौन सा आर्ट प्रोड्यूस करते हैं और आप कौन सा आर्ट जुड़ा है। फर्ज किया कि जो तरक्की पसंद आर्ट जब पैदा हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो जो रिवायती जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थे उन्होंने तरक्की पसंद आर्ट की रेजिस्टेंस की, लिहाजा इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी एक नौइयत है, इसकी एक जहद है और इसकी एक मैनिफेस्टेशन है। अब मार्क्स कहेगा कि ये तरक्की पसंद और गैर तरक्की पसंद जो आर्टिस्ट है इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी रूट जो है वो माशी तौर सतह के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी में तलाश हो। कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट कहते हैं नॉट नेसेसरली कि भाई गजल की को आप कब गजल कहेंगे और कब उसे नज़म कहेंगे, गजल के उसूल मजा करदा है उस रिवायत के अंदर जिसमें गजल पैदा हुई। तो अब अगर आप किसी चीज को, किसी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को गजल मानने से इनकार करते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं इस आजाद नज़म को नज़म के तौर पे माना जाए, तो उनके दरमियान जो निज़ा की कैफियत है वो आर्ट के दायरे में एक नॉवल्टी पैदा करेगी, नैरंगी पैदा करेगी, और उसके नतीजे में ह्यूमन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए नई जहदें खुल जाएगी। गो के ये बुनियादी तौर पर रूट नहीं करता सिर्फ इस बात पे कि कुछ लोगों के पास सरमायादाराना जराए पैदावार पर उनका कंट्रोल है और कुछ लोगों का सरमायादाराना जराए पैदावार पर कंट्रोल नहीं है, नॉट नेसेसरी। कुछ लोग सरमायादारी से ज्यादा मुतमत्ते हो रहे हैं और कुछ लोग सरमायादारी से कम मुतमत्ते हो रहे हैं। इस बुनियाद पर नज़म और आजाद नज़म में जो फर्क है उसको वाजे करने या उसको उसकी दलील फराहम करने के कॉन्फ्लिक्ट को बयान करना मुमकिन तो है, लेकिन ये कोई वाहिद परस्पेक्टिव नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट को बयान करने का। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो ये कहेंगे कि जिंदगी के अंदर रिवायात के मुताबिक जिंदगी गुजारना और गैर रिवायती जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंदीदा है कुछ लोगों के ख्याल में और कुछ लोगों के ख्याल में रिवायती तर्ज जिंदगी गुजार, लेकिन ये माशरती रवैये जो है एक खास के नजा और एक खास के कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करेंगे, जो कि डायरेक्टली मुतासर करेगा माशरती ढांचे को या समाजी ढांचे को। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट समाजी ढांचे के अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों के जो इम्कान पैदा करेगा वो नेसेसरली क्लास कॉन्फ्लिक्ट से पैदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि उसके नतीजे में एक नई माशरती सबबंदी पैदा हो जो कि मुख्तलिफ हो उस रिवायती सबबंदी से जो कि ट्रेडिशनली प्रैक्टिस हो रही है, और उस संबंधी से भी जो कि इश्तराकी चाहते हैं कि पैदा हो जाए। इसी तरीके से अदब के अंदर और लिटरेचर के अंदर और तफरीहात के अंदर और तशरीहात के अंदर जो नए नए कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में सोसाइटी की रिचनेस जो है वो पैदा बढ़ती है और उसके नतीजे में उस माशरे के अंदर मुख्तलिफ नौ नस्लों के लोग और मुख्तलिफ ख्याल लोगों और मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एब्जॉर्प्शन मुमकिन हो जाती है, जिसके नतीजे में जहीन लोगों की माशरे के अंदर एब्जॉर्प्शन के इम्कान बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में वो माशरा एक बड़ी तहजीब की पैदाइश और एक बड़ी तहजीब के फरोग में एक रोल प्ले करता है। और उसके लिए एक आइडियल माशरा अगर आप देख सकते हैं तो वो एक अमेरिकन माशरा एग्जाम्पल के तौर पर, नहीं कॉन्फ्लिक्ट की जो नेचर है जैसे मैंने बताया वो वायलेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर कॉन्फ्लिक्ट की नेचर वायलेंट नहीं होती। मतलब ये कि दो शायर जब आपस में बहस करते हैं कि ये भी एक नौयत का कॉन्फ्लिक्ट है उन दोनों के दरमियान, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट डाइवर्सिफाई करेगा उस स्फीयर ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन को जिसमें वो दो मुख्तलिफ ख्याल लोग मौजूद हैं, या रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के अंदर जो डाइवर्सिटी आती है वो रिलीजन की उम्र को बढ़ाती है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ्लिक्ट थियरीज, ना कि कम करे, रिचनेस उसमें बढ़ जाती है। मतलब ये कि अगर आप कहें कि ये भी मुसलमान है और ये भी मुसलमान और ये भी मुसलमान और ये मुसलमान है, जैसे हम कॉन्फ्रेंस में कहते थे कॉस्मोपॉलिटन इस्लाम का तस्वुर उन्होंने वहां पेश किया कि भाई कुछ सब मुसलमान हैं और सब मुस्लिम ममालिक से आए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है शराब भी पी रहे हैं, कुछ लोग जो है शराब पी रहे हैं लेकिन सुअर नहीं खा रहे हैं, कुछ लोग सुअर भी खा रहे हैं और शराब भी दे रहे हैं और इस्लाम पे बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग ना सुअर खा रहे हैं ना शराब पी रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं जो सुअर और शराब खा रहे हैं पी रहे हैं उनको इस्लाम पे गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, कुछ लोग पब में डांस कर रहे हैं लेकिन वो शराब और सुअर इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ लोग जो है वो डांस तो कर रहे हैं लेकिन तवायफ को अपने साथ लेके अपने बेडरूम में नहीं जा रहे, उनकी अलग यू नो मुख्तलिफ ज्यादा से। लेकिन इन सब के अंदर जो सबसे खूबसूरती की बात है कि इसके बावजूद के मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं एक ही मेज के ऊपर बैठकर आर्ग्यू आउट कर, जिसके नतीजे में जो इस्लाम की शक्ल निकलेगी वो ज्यादा बेहतर होगी जिस चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन इस्लाम जिसमें अरब्स भी हैं और टर्क्स भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं और पठान भी हैं और हर इराकी भी हैं और कुर्द भी हैं और चेचनियन भी हैं, ये सब बैठे हुए और मुख्तलिफ टेम्परमेंट के हैं लेकिन सब इस बात पे मुतमईन हैं कि वो मुसलमान हैं और वो दूसरे को मुसलमान नहीं समझते फिर भी उससे इस्लाम पे गुफ्तगू करें।
मतलब ये कि इस अनाजी की जो हैसियत है वो ये कि इसमें खैर और गुड का कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब ये
तनाजा
जो है किसी खैर और छूट के
कंसेप्ट
से खाली है,
तनाजा और
के अंदर भी वो खुफिया कोहेरेंस मौजूद है जो कि कंपार्टमेंटेशन के अंदर।
जी 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 बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि उसमें ये मौजूद है और उसकी दलील है हमारे पास एक क्यू दलील, लेकिन उस पे जाने से पहले पहले इसे हम अच्छी तरह समझ लें कि जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों चीजों के दरमियान, ये आप कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इन अ लॉन्ग रन गुड प्रोड्यूस करेगा, इन अ लॉन्ग रन क्या गुड प्रोड्यूस करेगा, हार्मनी प्रोड्यूस करेगा, दैट यू आर एबल टू टॉलरेट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को टॉलरेट करने के नतीजे में जो साइकी पैदा होती है वो इवेंचुअली एक ग्रेटर गुड को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। लेकिन हेगल का जो तनाजात को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म है वो डायलेक्टिकल है, रैशनल, वो रैशनल है और बुनियादी तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट मार्क्स की इस बात को कि कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद पर ही तब्दीली आती है इससे एग्री करते हैं, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को यकरंगी नहीं दिखाते। इसी तरीके से हेगल के पास भी जो कॉन्फ्लिक्ट की नौयत है वो यक वन डायमेंशनल है, तो वो रैशनल होते हैं यानी कि एंटीथेसिस और सिंथेसिस के नतीजे में जो पैदा होते हैं। तो ये जो सिंथेसाइजेशन है ये खासतौर की तारीख और एक ग्रेटर गुड की तरफ मुराजियत है और बुनियादी मुराजियत तो नहीं है मगर एक सफर है और वो हेडिंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड लुकिंग है, और बुनियादी तौर पर ये कॉन्फ्लिक्ट की जहदें एक से जायद है, यानी कि माशरती सतह पर भी है, रियासती सतह पर भी है, समाजी सतह पर भी है, माशी सतह पर भी है, इखलाकी सतह पर भी है, मजहबी सतह पर भी है, नफ्सियाती सतह पर भी है, और ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हार्मोनाइज है उस कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज के साथ, और ये इसमें एक खास तरह का ताल्लुक है कि बढ़ावा देता है हर सोल्यूशन इस कॉन्फ्लिक्ट की नौयत को। क्यों? जो थियरी ऑफ जो नॉलेज है आपके पास वो बुनियादी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट रिडन है और कंपार्टमेंटलाइज है, लिहाजा आप जब भी कोई हल पेश करेंगे गिवन कॉन्फ्लिक्ट का, वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन से ही वो हल आएगा, लिहाजा वो हल जो होगा वो भी पर्टिकुलर नॉइज का ही होगा, जिसके नतीजे में एक नए जाविये इल्म से जब आप उस मसले को देखेंगे तो वो मसला आपको हल होता हुआ दिखाई नहीं देगा, लिहाजा आप उसका कोई दूसरा हल पेश करेंगे और उसके बाद कोई तीसरा हल पेश करेंगे, उसके बाद कोई चौथा हल पेश करेंगे, और उसके नतीजे में वो हल जो है वो अपने पैदा करदा मसाइल के नतीजे में नए हल के मतकाजी होंगे, और उसके नतीजे में आपको नए इल्म की जहदें तलाश करनी पड़ेंगी उन पहुंच में। मसलन ये मतलब ऑथेंटिसिटी का सवाल ही नहीं है ना, कि आपने तो ये कह दिया कि जिंदगी अतरंगी है ही नहीं, तो ऑथेंटिसिटी का क्या सवाल? जो फंक्शनल आपको दिखाई दे,
क्राइटेरिया तो कुछ भी नहीं है,
क्राइटेरिया कुछ नहीं है, लेकिन हम ये बताएंगे कि एक क्राइटेरिया निकल कर आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि बजाय जो कॉन्फ्लिक्ट आप पैदा करते हैं वो इमीडिएट प्रॉब्लम का रिस्पांस होता है। मसलन ये कि आपने एक अचानक एक चीज फिनोमेना देखा कि रोडों के ऊपर ये बच्चे देखे हमने जो जमीन पे जिसम घसीट घसीट के हाथ लेते हैं, आपको डर होता है गाड़ी के नीचे ना। हमारे विजुअल स्टडी ने स्टूडेंट ने काम किया, उसने तकरीबन 30 मुख्तलिफ बच्चों के को ट्रेस किया जो मुख्तलिफ सिग्नल्स के ऊपर काम भी मानते हैं, इस तरह जिसम गति गति उनके अंदर से 24 या 23 बच्चे थे जिनके पैर बिल्कुल थी, ठीक है, वो करते ही हैं कि बड़ी पैंट पहले, सही है, जिसमें उनके पैर की साख छुप जाती है और वो जिसम घसीटते हैं, क्योंकि वो जिसम घसीटते हैं वो उनको पैसे लोग ज्यादा देते हैं, ज्यादा मजलूम लगते हैं आप, तो उसने बताया कि ये मजलूम नहीं है, लेकिन ये कि मजलूमियत जो है क्या पैसे कमाने का एक जरिया बन सकती है? मजलूमियत है, जितने ज्यादा मजलूम हो उतने ज्यादा पैसे कमाने के इम्कान बढ़ गए, तो मजलूमियत को तुम एक मजलूमियत समझोगे या ब्लेसिंग समझोगे? माशरे की क्या नौयत होगी कि अगर वही बच्चा पैरों पे चल गया है तो माशाओं से भगा देगा, लेकिन वो बच्चा बड़ी पैंट पहन के जिसम घसी घसी क्या है तो माशाओं से पैसे दे देगा। तो माशरा क्या कहता है? माशरे की कदर यह है कि अगर तुम अपने चल फिर सकते हो तो तुम खुद से अपनी मेहनत से पैसे कमाओ, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम हमारे पर रहमो करम पे आ जाओ तो हम तुम्हें मदद करने पे तैयार हैं। तो ये बुरी चीज है या अच्छी चीज है? अच्छी चीज है ना, लेकिन ये कि इसके नतज तो बड़े खौफनाक निकल रहे, बहुत सारे लोग जानबूझ के बच्चों को पकड़ के अपाहज कर देते हैं, अपाहज कर देते हैं, लिटरली उनको अपाहज कर देते हैं ताकि कोई शक ना रहे कि ये अपाहज ही है, सर पर लोहे की टोपी पहना देते हैं, रौला शाह की चूड़ियां बना देते हैं उनको, उनके पैर की नसें दबा देते हैं, पैर की ग्रोथ रोक देते हैं, हाथ की ग्रोथ रोक देते हैं, इसके नतीजे में खास तरह की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है जिसकी लीगल डायमेंशन है, इनको पकड़ना चाहिए, जो सजा दी जाएगी उससे हम बहस नहीं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि आपने एक मसला देखा, आपने देखा कि शहर में रोड के ऊपर इस तरह बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं, इसे आपने एक मसला समझा, लेकिन चूंकि आपका इल्म डाइवर्सिफाइड है, आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप ना सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, आपने कहा ये लोग जो है ना बच्चे यहाँ पे पैदा अब आ रहे हैं रोड के ऊपर और यहाँ से फिर ये नशे की लान में लग जाते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए, एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिसमें इन बच्चों की निगहदाश हो और वो माशे के अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो ये जो मैंने हल पेश किया है कि वो बच्चे जो कि आ गए हैं सिग्नल के ऊपर उनको ले आके अच्छे घर में रखा जाए, उनको तालीम दी जाए, इसने एक सतह पर इस मसले को हल किया और एक सतह पर इस मसले को इंटेंसिफाई किया। हल क्या किया? हल ये किया कि सिग्नल से बच्चों को उठा के एक बेहतर माहौल फराहम करने की कोशिश की। दूसरा इसने मसला क्या पैदा किया? मसला क्या पैदा किया?
इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया उस
चीज को, इंस्टीट्यूशन
मतलब वो क्या 22 बच्चों को ला के उनको रूट कॉज को एड करेगी आए कहाँ से?
हाँ, मतलब ये कि माशरे के अंदर वो बच्चे आसमान से टपक रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप इस सवाल से बहस नहीं करते, क्यों आपके बस से बाहर है। आप ये हल पेश कर सकते हैं कि एक एनजीओ खोल के वो कर लें और आप जो है भी मांगे माशरे से और उस इदारे को चलाते रहे, बच्चे माशाल्लाह आते रहेंगे रोडों पे और आप वहाँ वहाँ से उठा कर उनको डालते रहेंगे और वो आते रहेंगे और डालते रहेंगे। तो ये जो इस तरह के जो एडहॉक सोल्यूशन होते हैं ना, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल इस तरह से इनफाइनाइट रिगरेंस है उन सबके प्रॉब्लम्स, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप जिन प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं अपनी लिमिटेड कंपार्टमेंटलाइज नॉलेज की बुनियाद पर करते हैं और उसका जो हल होता है वो भी उस लिमिटेड कंपार्टमेंटलाइज नॉलेज की बुनियाद पर ही होता है, जिसके नतीजे में आप एक हल तो पेश करते हैं लेकिन उसके नतीजे में जो आपने एक इदारा बना दिया वो नए कॉन्फ्लिक्ट जन्म कर देता है सोसाइटी के अंदर।
मसला ये है कि आप ये हम देख रहे हैं कि ये आज जो है रोड पे कौन उसको जा रहा है, अच्छा वो अवामिल क्या है, इंतजाम जा रहा हूँ एक मिनट का काम नहीं, क्या बस पे नहीं है या मतलब ये कि आसान रास्ते का इंतजाम?
देखिए मसला ये है कि आपके जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था फैमिली उसको आपने अनअटेंडेड छोड़ दिया, सही है, और आपने कहा कि ये सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा। अगर फैमिली फंक्शन कर रही होती तो मेरे बच्चे तो भीख नहीं मांग रहे ना रोड के ऊपर, इसलिए कि मैं उनकी जिम्मेदारी, लेकिन फर्क किया कि मैं भाग जाऊँ अपनी बीवी को छोड़ के और मेरी बीवी बर्तन नहीं मांग सको तो कुछ नहीं आता हो, भीख मांगना शुरू कर दे रोड के ऊपर, तो वो जो भीख मांग रही है असल में वो किस वजह से मांग रही कि फैमिली स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया। अब मैंने कहा कि ये इदारा जो था वो था, अब उसका क्या कर देते हैं, मैं दूसरा इदारा बना देता हूँ जो ऐसी औरतें जिनके मुंह पे तेजाब फेंका जाएगा उनका हम इलाज करें, लिहाजा मैं एक इदारा खोल के बैठ गया जिप्लेक्स में कि जो भी खवातीन अपने मुंह जला जला के आती जा रही है उनको इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं, मुंह जल गया तो कोई बात नहीं हम उसको ठीक करेंगे।
आप जो लॉन्ग रन में इसका सोल्यूशन निकालने के जो लोग होंगे या जा रहे हैं उनके, वो तो अपना काम सब भी करेंगे लेकिन वो भी तो कोई सोल्यूशन तो देंगे, टेम्परेरी भी देंगे और लॉन्ग रन भी देंगे।
एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट थियरीज जो है वो ये बताते हैं कि इसके नतीजे में नई किस्म की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती चली जाती है, इतनी होती है कि उसके नतीजे में जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि जिस तरह स्कूल ने रिप्लेस कर दिया माँ बाप की तरबियत को, अब यानी कि माँ बाप की कोई बात सुनना बच्चे के लिए मुमकिन नहीं क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड, है ना, तो फिर वो बच्चा जो है वो माँ बाप से कोई ट्रेनिंग लेता ही नहीं है, वो तो सुबह से शाम तक स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद उसको ट्यूशन पढ़ने चला जाता है, ट्यूशन से आने के बाद मौलाना साहब से पढ़ता है, मौलाना साहब से पढ़ के वो टीवी देखता है और फिर सो जाता है, तो माँ बाप ने क्या तबियत दी उसको? तो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था उसको फर्म बन गया ना, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन पैदा होते हैं वो इंस्टीट्यूशन हवा में तो नहीं पैदा होते ना, इंस्टीट्यूशन पैदा होते हैं कि उन इंस्टीट्यूशन के साथ लोग अपना वक्त सर्च कर रहे हैं, तो वो वक्त कहाँ से निकाल के कहाँ सर्च कर रहे हैं, वो वक्त कहीं इस दूसरे इदारे से निकाल के उधर सर्च कर रहे हैं ना, तो वो इदारा जो था जिसमें वो वक्त अब नहीं दे रहे वो इदारा तो खत्म हो जाएगा ना, इदारा बजाते खुद तो कोई चीज नहीं, कोई कमरा थोड़ी है, वो तो डिपेंड करता है उन ताल्लुकात की बुनियाद पर जिसकी बुनियाद पर वो चल रहा है, लिहाजा वो इदारे में जब लोग मुनसलिक ही नहीं हो रहे مربوط ہی نہیں ہو رہا ہے تو ادارہ ایونچولی وائپ آؤٹ ہو جائے. تو اس طریقے سے مختلف کانفلکٹ ریڈن انسٹیٹیوشن پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں سینکڑوں این جی اوز کام کرتی ہیں ہاسپٹل کے اندر لوگوں کے علاج کے عمل کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ڈاکٹر پیسہ اتنا لے رہا ہے جو وہ لوگ پے نہیں کر سکتے, لہٰذا وہ بھیک مانگ مانگ کے ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ ڈاکٹر ان کا علاج کرے. تو سہولت بھی یہ ہونا چاہیے نا کہ ڈاکٹر نہ کرے, ڈاکٹر اتنے پیسے نہ لے. لیکن اب کہیں نہیں, یہ تو جب دیکھا جائے تب دیا ہے, پہلے تو بھیک مانگ مانگ کے ان کا علاج تو کرو, دوا تو خریدو. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن, تو وہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے اسلام کو سامنے رکھ کے ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ کرے گا, باقی چھ دن لوگوں کی کھال کھینچے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا کیا, اس اپنی اس امپیکٹس کو ٹھنڈا کر دیا, کسی سطح پر اس نے اس کانفلکٹ کو جو اس کے اندر پیدا ہو رہا تھا ریزالو کر لیا. لیکن اس نے ایک نیا کانفلکٹ پیدا کر دیا, اس نے ایک نیا کانفلکٹ پیدا کر دیا کہ سسٹم کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہو رہا ہے, بس اس میں تھوڑی سی ایڈ ہاک ماڈیفکیشن کی ضرورت ہے, ہفتے میں ایک دن مختلف کر رہی ہوں. اس طریقے سے مختلف کاسمیٹولوجیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ابتدا کے اندر, بعد میں وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے اور وہ انسٹیٹیوشن ایک نئے کانفلکٹ کو جنم دیتا ہے اور پھر ایک نئے کانفلکٹ کو جنم دیتا ہے اور پھر ایک نئے کانفلکٹ کو جنم دیتا ہے. لیکن وہ کانفلکٹ اس معاشرے کی خوبصورتی کو, یعنی کہ یہ مختلف قسم کے کانفلکٹ ریڈن انسٹیٹیوشن ٹالریبل بنا دیتے ہیں معاشرے. جو اصل کام کرتا ہے وہ یہ کہ تم ڈاکٹر تمہیں علاج نہیں کر رہے, لیکن ایک این جی او اگر کھلی ہوئی ہے تو تم ڈاکٹروں کے خلاف کسی بڑی جدوجہد پہ تیار نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا کام نکل گیا, چلو تمہارے خاندان کے 10 لوگ مر گئے لیکن 2 ٹھیک بھی ہو گئے, بھیک وغیرہ لی ملی, چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گئے. کسی طوائف نے کسی پنس نے ایک ناچ ناچ کے ایک ادارہ کھول دیا جہاں پہ علاج ہوتا ہے مفت. تو آپ نے کیا کہ طوائف کے کوٹھے کو بھی لے لیجیے بادشاہ جو ہے کہ یہ طوائف کتنی اچھی طوائف ہے کہ وہ جو ہے وہ
مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر طرح کے کانفلکٹ کے لیے تیار ہیں,
کانفلکٹ کے لیے تیار بھی ہیں اور وہ کانفلکٹ اکاموڈیٹو بھی ہے اور وہ اکاموڈیٹ کر کے سسٹم ایز اے ہول کی لیجیٹیمیسی بھی جسٹیفائی کر دیتا ہے. یعنی کہ تمہیں کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹروں کے خلاف, تمہیں کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسکولوں کے خلاف, تمہیں کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوور آل سسٹم کے. اوور آل سسٹم تو ٹھیک ہے, بس یہ کہ اسکول کی فیسیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. باقی
یہ دیکھ سکتے ہیں انقلاب کی جدوجہدوں کے سارے سپاہیوں کو اور اسلامی انقلاب کے سپاہیوں کو این جی او کے اور خود کے درد مندوں کی شور شام بردی ہوگی,
سب اکاموڈیٹ ہو. آپ دیکھیے نا وہ سب بڑے بڑے ریولیوشنریز ہیں جو این جی اوز کھول کے بیٹھے ہیں, اپنے زمانے کے بڑے ریولیوشنریز ہوتے ہیں یہ, جو معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ ایک اسکول کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر اسکول کیا ہواؤں میں چلتا ہے, اسکول کی اپنی ریشنلٹی ہوتی ہے نا, امتحان کیسے لیا جائے گا, اسکول کا کیریکولم خود بنا رہے گا, اسکول کا کیریکولم تو ایک سسٹم سے نکل کے آ رہا ہے نا بھائی, تو وہ اسکول بنا کے وہ کیریکولم خود ہی بنا رہا ہے. یعنی کل پرسوں شہزاد رائے بنا رہے تھے یہ اسکول کا کیریکولم کیسے ہونا چاہیے, وہ بتا رہا ہے جس کی خالی کی اپنی ایجوکیشن وہ بتا رہا ہے. پاکستان کے کیریکولم کا پرابلم کیا ہے, کیونکہ وہ اپنی دھندے سے اس نے ایک اسکول کھول لیا. اچھا پھر اس میں پھر آپ مختلف مارکیٹ انسٹیٹیوشنس کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں کہ بھائی سرف ایکسل کی ایک تھیلی خریدنے کے نتیجے میں 1 روپیہ آپ جو دیں گے وہ دیں گے اس کو جو کہ پارک بنانے کے لیے کام آئے گا, اور وہ پارک اس نوعیت کا ہوگا جس میں بچے جب کھیلنے جائیں تو ان کے کپڑے خوب مہنگے تاکہ سرف ایکسل دے, تو وہ جو سرف ایکسل والوں پوری موومنٹ چلائی, کھیلنا تو بچوں کا حق ہے لیکن وہ بچے جتنے بھی کھیل کھیل رہے ہیں وہ سارے کپڑے خراب کرنے والے کھیل, اور اس میں یہ میسج یہ ہے کہ گاہک تو چلا جائے گا جو سیکھا بھی جا رہا ہے, سیکھنے کے لیے کپڑے گندے کرنا ضروری ہے. है ना, तो बुनियादी तौर पर जो उसका अल्टीरियर मोटिव है वो तो ये है कि पाउडर बिके, उसमें ह्यूमेन डोमेन आप ये ले आए कि इसने इसके नतीजे में तुम्हारे बच्चों के लिए पार्क बनाए गए, वो पार्क ऐसे होंगे जिसमें बच्चे जब खेलेंगे तो उनके कपड़े बहुत मैले हो जाएंगे और वो तुम धोगे और वो धो के एरियल में ही धोना चाहिए क्योंकि एरियल में ही जो तुम्हें वो दिया है तुम्हारी मॉरल सेल्फ को भी अपील करेंगे कि ये दूसरे बदमाश तो तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम तो तुम्हें कुछ कर रहे हैं। और ब्लू बैंड वाले जो हैं वो फ्री ब्रेकफास्ट तुम्हें कराएंगे और तुम्हें मक्खन लगाने का तरीका बताएंगे। हमारी एक जानने वाली हूँ वो उसमें गई ब्रेकफास्ट में जो उन्होंने ब्लू बैंड वालों ने कराया, तुमने बच्चों उनको मुफ्त में बच्चों को डबल बोझे मक्खन लगा लगा था उन्होंने। उसके बाद जब वो आए तो दो तीन दिन बाद उन्होंने अपने बच्चों को मक्खन लगा के दिया तो बच्चे ने कहा इतना कम मक्खन, मक्खन तो इस तरह लगाया। उन्होंने बच्चों को ट्रेन किया मक्खन इस तरह लगाया, इतना थिक लेयर है, ये नहीं कि मक्खन को दिखा दिया डबल रोटी को मक्खन दिखाया ये मक्खन है, नहीं मक्खन को लिवर दो पूरा उसको। तो बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं वो उस ब्रेकफास्ट की मूवमेंट, आज उन्होंने मुफ्त में आपको खाना खिला दिया। तो बताने का मतलब ये कि जो कॉन्फ्लिक्ट की जो नौयत है वो एक खास किस्म के सिस्टम लेजिटिमेसी को जस्टिफाई करती है और कोई भी वन डायमेंशनल अटैम्प, कोई भी सिंगल मूवमेंट अटैम्प, कोई भी वन पॉइंट एजेंडा अटैम्प्ट इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की नित नए कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर इस तरीके से इस सिस्टम को तुम्हारे लिए टॉलरेबल बना देती है कि तुम सिस्टम की ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन के प्रोसेस को बर्दाश्त करने शुरू करो। यानी कि अब आपको ही बताया जाता है कराची की रोडें टूटी हैं, ये हमारे पे जुल्म है, जुल्म को आपने डिफाइन कर दिया रोड के टूटे होंगे, तो भाई रोड जब बन जाएगी तो फिर क्या होगा, जुल्म खत्म हो जाएगा। रोड बन जाएगी तो ज्यादा जुल्म होगा ना, तुम ज्यादा जल्दी जा सकते हो, दूर जा सकते हो, ज्यादा तुम पेट्रोल जलाओ, ज्यादा तुम वो करो, तो क्या फिर आपका यही कहते हैं कि रोडें टूटी भी रहे और हम हॉस्पिटल ना पहुंच सके, फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए, यानी टूटी हुई रोड का मतलब होता है हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके और आपका इंतकाल हुआ, टूटी हुई रोड का मतलब होता है हॉस्पिटल बिल्कुल जा बलद होके गाड़ी में बैठ के निकलना और रोड टूटी हुई हॉस्पिटल ना पहुंच पाना और इंतकाल हो जाना। रोड टूटी हुई होने रोड इसलिए नहीं बनाई जाती भाई कि तुम हॉस्पिटल पहुंचो और तुम्हारी जिंदगी बच जाए, रोड इसलिए नहीं बनती, रोड इसलिए बनाई जाती है कि नीड्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोसेस एक्सेलरेट करे, असल में इसके बारे में एम्बुलेंस भी चली
जाए,
मंडी की रफाई के लिए बनाई जाती है। यानी कि अंग्रेजों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो रेलों का जाल बिछाया था इसलिए बिछाया था कि हमारे लोग गांव से शहर आ सके, इसलिए कि मजदूर पहुंच सके फैक्ट्रियों तक और वो मटेरियल पहुंच सके हार पर, इसी भी चाहिए थी ना असल में, तो यही था उसका मत। लेकिन अब हमारे लिए तो ये एक मॉरल इशू है ना कि रेल की पटरी क्यों बिछाई जाती है, इसलिए कि मेरा बच्चा माँ से मिल सके, बच्चा माँ तक पहुंच सके, माँ गांव में बैठी और रेल की पटरी में छक 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 करके वो पहुंचे, तो भाई वो तो एक इवेंट है ना, तो कभी पहुंच गया कभी ना कभी पैदल चलेगा तो पहुंच ही जाएगा, तू जा क्यों रहा है माँ को छोड़ के, ये तो बता माँ को घर में छोड़ के जा क्यों रहा है शहर, वहीं क्यों नहीं खेती बाड़ी करता। तो रेल की पटरी इसलिए नहीं बिछाई गई थी कि बुढ़ी के से मिले एक इंसान जाके अपनी बुढ़िया से मिले, इसलिए रेल की पटरी बिछाई थी रॉ मटेरियल यहाँ से लूट के पहुंचाया जाए वहां से, ये जहाज इसीलिए नहीं बन चलाए गए कि हम लोग हज 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 करने फौरन जाए जल्दी से आराम से बैठ के हज करने चले जाए, तो वहां से बहुत सारा सामान लेके आए, फ्रिज टीवी वगैरह खरीद के ले गए और वहां पे अपने जो मिनिस्टर हो रिलीजियस अफेयर पे उसको अर्जियां लिख के दें कि वहां से जब हम वापस आते हैं तो हम लोगों को ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदारी की इजाजत है। इस जमाने बड़ी मूवमेंट चलाई थी हाजियों के एक ऑर्गेनाइजेशन ने कि ड्यूटी फ्री शॉप से हमें खरीदारी क्यों नहीं करने दी, हुज्जाज को हुज्जाज इकराम जयदेवराम यहाँ पे आया, अपने पासपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप पे फ्रिज खरीदे, टीवी खरीदे, एसी खरीदे, टेप रिकॉर्डर खरीदे, हाँ चॉकलेट खरीदे, कैमरे खरीदे, ये तुम्हें क्यों नहीं खरीदे, हम पर वो उसूल क्यों नहीं लागू। जियाउल्लाह खान ने कहा भाई तो हज पे जाते हो तो हज पे तो नहीं करना चाहिए, दुनिया से दूरी होने होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, पासपोर्ट के उसूल को वायलेट करता है ये ड्यूटी फ्री शॉप, या ड्यूटी फ्री शॉप को आग लगा दो। हाँ क्योंकि वो नहीं, तो बताने का मतलब ये जहाज इसलिए थोड़ी बने थे, हज से जहाज तो इसलिए बने थे कि आप जल्दी से ट्रांजेक्शन को मुमकिन बनाए, उसमें हज भी कर लो उमरा भी कर लो। क्या इसमें बताया था
क्लाइंट बनने को,
बुनियादी तौर पर तो तुम्हें एक क्लाइंट हो और उसके लिए तुम हज करने जाते हो, कुछ करने जाते हो, तो वो बड़ी हमारी क्रिश्चियन है, स्टूडेंट थी मेरी अधिक फॉर नॉलेज। तो बैरक ओबामा ने कहा था ना कि हम मक्के मदीने पे हमला करते हैं जमा का, उधर उसने कहा कि रेवेन्यू जनरेशन का इतना बड़ा सोर्स है, अमेरिका कभी वहां पे हमला नहीं करेगा। हाँ ये जरूर करेगा कि हज के पूरी जिम्मेदारी अमेरिका ले लेगा, हज के बेहतरीन आला इंतजाम अमरीका अपने हाथ में मनाती है, जनरेट होता है ना पैसा भी जबरदस्त। अभी इराक के अंदर जो इन्होंने किया तो उन्होंने हज वो जो हुआ मातम वगैरह जो होता है और मुहर्रम के आगे उसको उन्होंने कहा भाई ये तो इतनी जबरदस्त फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, अमेरिकन एनजीओ इन्वेस्ट कर रही है उसके अंदर कि सब लोग आराम से आके अपने हजबेंड
आपको
पीटे सब कुछ करें और चले। इसमें क्या है उनको से क्या पीट रहे हैं तो पीटे, हमने आपको मातम कर रहे हैं तो करें, इसमें क्या है? इसके नजर में एक एक्टिविटी हो रही है, उनको इससे सरोकार थोड़ी है जो तुम सफा मरवा के दरमियान जा रहे हो या हजरत इमाम हुसैन के रोजे पे जा रहे हो। या तो सवाल ये है कि कोई भी ऐसी सोशल एक्टिविटी जिसके नतीजे में कैपिटल एक्युमुलेशन के इम्कान बढ़ सकते हैं वो हो सकती है, हो सकती है, ठीक है करते रहे। फुटबॉल का मैच भी हो सकता है, मातम भी हो सकता है, हज भी हो सकता है, बकरीद भी हो सकती है, कभी बकरीद पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, कभी हज पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन उस एक्टिविटी पर पाबंदी लगाएंगे उस डायवर्सिटी को जो कि उस डायवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके नतीजे में कैपिटल एक्युमुलेशन के इम्कान में रुकावट कर रहे, उसको गैर माकूल बयान कर उसको, यानी कि जो टीवी पे जियो वाले क्या कहते हैं डायवर्सिटी स्पॉन्टेनिटी नॉवल्टी, लेकिन जियो वाले जब से बने हैं वो ये चाहते हैं कि तमाम मजहबी लोग एक चीज तक कायम हो जाए, एक ही बात बोले सब। लेकिन अगर देवबंदी इधर इस तरह हाथ बांध रहा है और बरेली एहरेदी इस तरह हाथ बांध तो कहते हैं ये क्या है, ये गलत बात, सब एक जैसे। वो डायवर्सिटी उसे वो डायवर्सिटी नहीं मानती, कोई छोटी दाढ़ी रखता है, कोई बड़ी दाढ़ी रखता है, कोई बुरखा दूर तक छुपाता है, कोई टिकिया छुपली छोड़ता है, इससे डायवर्सिटी क्यों नहीं कहते? इसलिए कि वो कहते हैं कि ये तो हकीकत एक ही है, क्योंकि हकीकत एक है इसलिए उस पर अमल करने का रास्ता भी एक ही होगा, और रास्ता एक होगा तो सबको एक ही पे चलना चाहिए, यानी कि खुदा के इरादे को पाने का एक ही रास्ता होता है, इसलिए सबको एक करना चाहिए। ये उसे नहीं पता होगा लेकिन हमें, लेकिन सरमाया जमा करने का कोई एक तरीका नहीं, इसलिए डायवर्सिटी वहां पे ले जिसे पहले जहां एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल है, लेकिन जहां पे इरादा और खुदाबंदी को पहचाना वहां डायवर्सिटी समझ आएगा। तो वो लोग जो डायवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं नॉन रिलीजियस डोमेन के अंदर, वो बुनियादी तौर पर क्या है, वो है जो कि कैपिटल एक्युमुलेशन की डाइवर्स मैकेनिज्म्स को अफोर्ड करें। लेकिन रिलीजन एक चले क्यों, क्योंकि खुदा तो एक ही है और खुदा का इरादा भी एक ही है और खुदा के इरादे को पहचानने एक तरीका, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک خدا کے ایک ارادے کو پہچاننے کا ایک طریقہ نہیں رہا. اس کی بنیاد پہ اصل میں آپ کس چیز کو کنڈیم کریں گے؟ ریلیجیس ڈسکورس ان اٹسیلف کو کریں گے. تو اس سے دو کام ہوئے آپ نے, کیونکہ ریلیجن کسی نہ کسی طور پر ریزسٹ کر سکتا ہے ڈائیورسٹی آف دی ایکومیڈیشن آف کیپٹل کو, اس لیے آپ نے اس کی ڈائیورسٹی کو مائنس مینیمائز کرنے کے لیے ریلیجیس ڈسکورس کو ڈی لیجیٹمائز کیا. اور ریلیجیس ڈسکورس جتنی ڈی لیجیٹمائز ہوگی, جتنی امارتس ہوگی, جتنی کنفیوزنگ ہوگی, اتنا زیادہ کس چیز کے امکانات بڑھ جائیں گے؟ کیپٹل ایکومیڈیشن. کیونکہ ریلیجن بہت ساری چیزوں میں حرام حلال کی باتیں کرتا ہے. اب حرام حلال میں تو وہ خالد انہوں نے کہہ دیا نا ستیش صاحب ٹی وی پر, وہ بھی بتا عثمانی ذات جو ہے جیو کے اوپر ہر دن روزے سے دس منٹ پہلے وہ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں, دو تین سوالات کے جواب دیتے ہیں الف جیو میں, نہیں اے آر وائی پہ الف. ٹھیک ہے, تو وہ جو بھی بک بک کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دو تین سوال کرتے ہیں ستیش صاحب, وہ فون سے جواب دیتے ہیں. تو ستیش صاحب نے اس کا جواب دیا فون سے, جو بھی سوالات نے کیے, یہ میں نے نہیں دیکھا, رحیم نے اور ذوالفقار نے دیکھا, انہوں نے جو جواب انہوں نے دے دیا, انہوں نے کہا بھائی انیس صاحب آپ سے ایک بات مجھے کہنی ہے آپ کے پروگرام کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہم سے اللہ رسول کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے دوران ہی یا اس کے بعد یا اس کے بیچ میں جو ہے ایسے ایڈورٹائز دکھاتے ہیں جو کہ بالکل ہی غیر اخلاقی ہوتے ہیں, اسلام باختہ ہوتے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, اور وہ آپ دکھا دیتے ہیں. تو یہ کہ کم از کم آپ جو ہے وہ یہ جو مذہبی پروگرام ہوتے ہیں اس میں تو آپ یہ نہ کیا جائے. تو وہ ذوالفقار, میں نے تو یہ نہیں دیکھا, ذوالفقار نے کہا کہ وہ جو ہے نا انیس احمد ہکلانے شروع ہوا, وہ گھبرا گیا, یہ کیا کہہ دیا, اچھا گھبرا گیا. اس کے بعد گھبرانے کے بعد انیس احمد نے تقیر عثمانی صاحب کا جواب, تقیر عثمانی صاحب فون پہ ہیں ابھی, وہ جواب دیتے دیتے اس کے ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے دیکھا نا سامنے تھوڑا سا ان میں سے آدھا ہو جاتا ہے وہاں پہ ایڈ آ گیا, وہ جواب دے رہا ہے اس میں ایڈ آ گیا, کس کا, ایچ بی ایل. اور اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو یہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ میں اپنے بورڈ آف گورنرز کو جو ہے یہ اس کا یہ بتا دوں گا.
میسج مل رہے ہو گیا کوئی تو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ اس کو میں کس طرح داخل کروں.
صحیح ہے نا, اب امپورٹنٹ بات کیا ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ انیس احمد کو بورڈ آف گورنر اگر سمجھدار ہوتے, مسئلہ یہ کہ ولگر ہے پاکستان کے اندر جو کیپٹلزم کی فارم آپ دیکھتے ہیں نا ولگر ہے, امریکہ میں ایسا نہیں ہے, یا یورپ خاص طور پہ برطانوی چینلز کو دیں گے وہ اتنے ولگر نہیں ہیں. ریلیجیس جب پروگرام جو ہوتے ہیں تو ان کو الگ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اگر فرض کیا کہ وہ سمجھدار ہوں تو وہ کہیں گے ہم اسلامی پروگرام میں ایڈ بن جائیں, تو اس سے زیادہ آپ ایکسپلوائٹ کر سکتے
اکوموڈیٹ ہو گیا.
اسلامی پروڈیوسر
اسلام کر دیا, دیکھو تخیصانی بھی خوش ہو جائے گا. اپنے بھائی تو وہ جو پورا پروگرام جو 24 آ رہے ہیں اس کے اندر ایک تم نے آئیلینڈ بنا لیا نا, ایک آئیلینڈ بنا لیا, اور آئیلینڈ بنانے کا مطلب یہ کہ تم نے یہ کہا کہ یہ جو پروگرام آ رہا ہے اس کے نتیجے میں جو 24 آر جو پروگرام آ رہے ہیں وہ لیجیٹمائز ہو. اللہ کا شکر ہے کہ یہ اتنے ذہین نہیں ہے کہ نہیں کریں, لیکن یہ کہ اگر وہ ذہین ہوتے تو یہی کہتے کہ ہم یہ پروگرام نہیں دیں گے.